हरे कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 6 वर्स नंबर 44। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। शब्दोकात् पूर्व अभ्यासेन अर्थात पूर्व यानी पिछला, अभ्यासेन अर्थात अभ्यास से, तेन उससे, एव ही, ह्रियते अर्थात आकर्षित होता है, ही निश्चय ही, अवश्यः स्वतः, अपि भी सः वह, जिज्ञासु उत्सुक, अपि भी योगस्य अर्थात योग के विषय में शब्द ब्रह्मादि वर्तते। शब्द ब्रह्म अर्थात शास्त्रों के अनुष्ठान अतिवर्तते परे चला जाता है, उल्लंघन करता है। अनुवाद, अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परिस्थित होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकर्षित नहीं होते, क्योंकि किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः आकर्षित होते हैं, जिनके द्वारा कृष्ण में आरूढ़ हो सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में 3.33.7 उन्नत योगी द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की व्याख्या इस प्रकार की गई है। अहो गतश्व पचतो गरीयान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम् ते पुस्तपस्ते जुह्वः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम् गृह्णन्ति एते। अर्थात, हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चंडालों के परिवारों में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जपकर्ता निसंदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने ठाकुर हरिदास को अपने परम प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि हरिदास का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, किंतु भगवान चैतन्य ने उन्हें नाम आचार्य की पदवी प्रदान की, क्योंकि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 लाख भगवान के पवित्र नामों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करते थे। और चूंकि वे निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहते थे, अतः यह समझा जाता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्म कांड को पूरा किया होगा। अतएव जब तक कोई पवित्र नहीं होता, तब तक कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता या भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप नहीं करता। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयति किरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 6 वर्स नंबर 44। अत्यंत ही सुंदर भगवान अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में बोल रहे हैं। अर्जुन ने पूछा था कि अयति ही श्रद्धयोपेता योगा चलति मानसा अप्राप्य योग संसिद्धि काम गति कृष्ण गच्छति। जो पहले तो श्रद्धा से आत्मिक साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता, इसकी क्या गति होती है कृष्ण में तुम। और आगे बोलते हैं 39 में कि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, एतन में संशय कृष्ण चेतुम अर्हस्य शेषत त्वदन्य संशयस्यास्य चेत्तान ह्युपपद्यते। कृष्ण आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके अतिरिक्त और मुझे कोई ऐसा दिखता नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके, क्योंकि केवल आप ही हो जो भूत भविष्य और वर्तमान को समझते हो। तो आप मुझे बताओ उसकी क्या गति हो रही है जिस जो श्रद्धा से भक्ति के नियमों का पालन करके कर्मकांड को छोड़ देता है। कर्मकांड असल में इस प्रश्न को हमें फिर से समझने का प्रयास करना चाहिए कि देखो अर्जुन क्या सोचता है कि कर्म कांड छोड़ के बंदा भक्ति करता है। कर्म कांड क्या होता है? जो वैदिक नियम है ना, वैदिक में लिखा होता है कि भाई आपको इस दिन ये करना चाहिए, उस दिन ये करना चाहिए, ये प्राप्त करने के लिए सरस्वती माता की पूजा करनी चाहिए, ये प्राप्त करने के लिए धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, पुत्र प्राप्ति के लिए ये करना चाहिए, पति को प्राप्त करने के लिए ये सब वैदिक अनुष्ठान है। ठीक है, अब ये करने सब कुछ छोड़ के व्यक्ति क्या करता है? भक्ति में लगता है। अब भक्ति में किसी कारण, कोई ऐसा कारण हो जाता है कि वो भक्ति को आगे नहीं बढ़ा पाता। अब दो तरह से पतन होता है, एक तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, अब यानी कि उसने सिद्धि प्राप्त नहीं की और रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई, तो जाहिर सी बात है अब ना इधर का रहा ना उधर का, भक्ति की सिद्धि भी प्राप्त नहीं की और कर्म कांड तो वैसे ही छोड़ दिया। अब उसके अलावा दूसरा पतन कैसे हो सकता है कि कर्म कांड को छोड़ के भक्ति प्राप्त भक्ति की, लेकिन भक्ति में उसने मतलब उसको ऐसा लगा कि अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, फिर वापस से उसने कर्म कांड जो है उसको स्टार्ट कर दिया। अपराध शुरू नहीं किए लेकिन कर्म कांड को शुरू कर दिया, उसकी क्या गति होगी? ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब लेकिन भगवान ने उसका उत्तर अत्यंत सुंदर दिया है। पहले भगवान ने सिद्धांत नहीं कहा, श्लोक नंबर 40 में सिर्फ आश्वासन दिया, क्योंकि अगर कोई बहुत ज्यादा विचलित होता है ना तो उसको डायरेक्ट से आप सिद्धांत समझाओगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसको पहले अगर आश्वासन देते ना, नहीं नहीं बेटा ये जो कार्य है उसमें तो कभी कोई नुकसान हो ही नहीं सकता, कुछ नुकसान होगा ही नहीं, तो अर्जुन को भगवान इसी तरह से कहते हैं पार्थ नैवेह न मूत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। देखो अर्जुन जो कल्याणकृत कार्य करता है ना इस लोक में और ना ही आगे, कभी उसका कोई हानि होती है, उसका कोई नुकसान नहीं होता, उसको कभी दुर्गति नहीं होती, वो हमेशा सदगति को प्राप्त होता। और फिर प्रश्न उठता है सदगति कैसी होती है, तो फिर अर्जुन को भगवान बहुत ही सुंदर बताते हैं, प्राप्य पुण्य कृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती सम। देखो अगर वो योग अभ्यास में यानी भक्ति योग में, कोई भी योग है, भक्ति योग है या ये ज्ञान योग है, किसी भी रास्ते में वो सिद्धि को प्राप्त नहीं करता, पतन हो जाता है, तो फिर क्या होता है, प्राप्य पुण्य कृताम लोकाम। पुण्य कृताम लोकाम का मतलब होता है सीधी भाषा में, सरल भाषा में, कि स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है, जहाँ पर उषित शाश्वती समा वो बहुत बहुत समय तक वो रहता है। ये कितना सुंदर है कि भगवान उसे कहते हैं कि अगर योग में वो भ्रष्ट भी हो जाता है तो भी उसे क्या प्राप्त होता है, स्वर्ग प्राप्त होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही, देखो अब जीव के पतन का कारण क्या होता है, अब समझो अगर वो पतन हो गया उसका भक्ति से, वो आगे नहीं जा सका, और पतन का कारण क्या होगा, भौतिक भोग की कोई ना कोई इच्छा। अगर भौतिक भोग के कारण वो फिर से कर्म कांड में लग गया, तो फिर भगवान इतना आश्वासन देते हैं कि मैं उसे वो भौतिक भोग इतनी मात्रा में प्रोवाइड करूंगा, उषित्वा शाश्वती समा, वो वहां पर शाश्वती समा बहुत बहुत दीर्घ काल तक स्वर्ग में वो सब भौतिक भोग प्राप्त करेगा जिसकी उसके मन में कभी कल्पना भी नहीं होगी। इच्छा जो है वो इतनी, उसकी सारी इच्छाओं को मैं पूरा कर दूंगा। यहाँ पर ये बात कितनी ज्यादा आश्वासनीय है, मतलब भक्ति में ये कितना बड़ा हमारे लिए एडवेंचर, बहुत ज्यादा, मतलब हमारे लिए बहुत ही लाभदायक बात है कि नाकाम होने पर, अगर भक्ति में आप सक्सेस नहीं होते हो, फेल हो जाते हो, तो स्वर्ग प्राप्त है, रथ की बात है। अगर आपको कोई कहे कि भाई आप आईआईटी का एग्जाम दो, अगर आप उसमें फेल हो जाओगे तो दार्जिलिंग में आपको 6 महीने के लिए मुफ्त में बड़े से बड़ी होटल में रहने के लिए दिया जाएगा, तो बोले वाओ, इसमें तो फिर फेल ही हो जाऊंगा, फेल होने में यदि 6 महीने का मुझे अय्याशी मिल रही है तो फिर है ना पास हो जाऊंगा तो क्या मिलेगा, हैरत होगी उसको बहुत। तो यही है, समझो भक्ति हर तरह से कल्याणकारी है। भगवान बता दिया पहले ही 2.40 में, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ी सी भी प्रगति आपको महाभय से बचा लेती है। तो यहाँ पर ये बताए भगवान कि अगर नाकाम हो गया वो योगी, प्राप्य पुण्य कृताम लोगा उषित्वा शाश्वती समय, बड़ी बड़ी समय तक, बहुत बहुत दीर्घ काल तक वो स्वर्ग में रहेगा, और उसके बाद जन्म लेगा कहाँ पर, शुचीनां श्रीमतांगेः योगो भ्रष्टो विजायते। दोनों हाथ में लड्डू, मरोगे तो स्वर्ग में मजा करोगे और पैदा होगे तो संसार में, बहुत अमीर घर में पैदा होगे और वहां पर मजा करोगे। क्या तो बेनिफिट्स हैं भक्ति में, क्यों करते नहीं लोग। यहाँ पर अर्जुन को भगवान इतना आश्वासन दे रहे हैं कि आगे फिर बोलते हैं कि अगर वो तो थोड़ी सी भक्ति, ये जो प्राप्य पुण्य कृताम लोकान् उषित्वा शाश्वती, थोड़ी सी भक्ति यदि वो करेगा और जल्दी से भक्ति से गिर जाएगा, पतन हो जाएगा, तो फिर वो फिर वापस से है ना अच्छी जगह पे जाएगा, मतलब स्वर्ग में जाएगा। और अगर ज्यादा किया फिर तो मतलब फौरन से उसको चांस मिलेगा ऐसा कि वो इतना जल्दी सिद्धि प्राप्त करे कि वो फौरन से मतलब सिद्धि प्राप्त करेगा और फिर वो जगह प्राप्त करेगा जो कि कृष्ण का धाम है। और उसके विषय में क्या कहा जाए, इस भगवान के धाम के विषय में कुछ कहने योग्य नहीं। भगवान कहते हैं न तत् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, मेरे धाम में जाने का सबसे बड़ा, बहुत बड़ा जो फायदा है वो क्या है, यद् गत्वा न निवर्तन्ते। क्योंकि अगर स्वर्ग में चला जाए भले दीर्घ काल तक बैठेगा, ब्रह्मलोक में चला जाए भले शाश्वती समा में बैठेगा, लेकिन फिर भी आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृति नोर्जुन, और क्षिप्रम भवत, वो जब आप स्वर्ग में चले जाओगे, क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, फिर भी एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों को भोगना पड़ेगा, लेकिन यदि मेरे धाम को प्राप्त हो गया तो दुख तुमसे बहुत दूर चला जाएगा, दुख कभी तुमको दिखेगा भी नहीं, केवल सच्चित आनंद वहां पर सत्य है, इटर्नल आनंद आपको प्राप्त होगा, इटर्नल ज्ञान प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा। और भगवान कहते हैं एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम, ऐसा जन्म प्राप्त करना इस संसार में अत्यंत ही कठिन है, बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। और जब ऐसा जन्म प्राप्त हो जाता है, यानी किसी योगी कुल में अगर उसको जन्म मिल जाता है, बुद्धिमान व्यक्तियों की जन्म कुल में, तो ऐसा जन्म प्राप्त करके पूर्व जन्म की दैवी चेतना उसे पुनः प्राप्त हो जाती है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वे उन्नति करने लगता, करने का पूरा प्रयास करता है। और अगर भगवान यहाँ पर एक और बात आज के श्लोक में बहुत ही सुंदर बता रहे हैं, पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवशोऽपि स, पूर्वाभ्यासेन, क्योंकि उसने पहले भक्ति की हुई है तो वो भक्ति जो है वो उसकी सहायता करती है, वो भक्ति जो उसकी जमा है भगवान किसी न किसी तरह से हृदय से उसे प्रेरणा देते हैं, और क्योंकि दिव्य ज्ञान हृदय के अंदर है और हृदय से उसको प्रेरणा मिल रही होती है, फिर वो क्या करता है, ह्रियते या वशः वशोपि, ह्रियते का क्या मतलब होता है कि आकर्षित होता है, वो कहीं पर भी पैदा हुआ हो वो खुद ब खुद भक्ति के रूल्स को फॉलो करने के लिए आकर्षित होता है, भक्ति उसे अपनी ओर खींच रही होती है, भले ही वो भौतिक आनंद लेने का प्रयास करता है लेकिन फिर भी यह वशोपिशन माना वो विवश हो जाता है, वो चाहता है कि मैं भौतिक भोग करूं क्योंकि ऐसे, लेकिन फिर भी उसकी जो भक्ति है वो ना चाहते हुए भी स्वतः उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। और ऐसे ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों के परिस्थित होता, शास्त्र यानी कि फिर उसको बाकी भौतिक जो वस्तुएं हैं उनके लिए शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वो खाली भक्ति करना चाहता है वो, क्योंकि उसकी भक्ति जो है वो अधूरी है और वो किसी न किसी तरह से उसको पूरा करने का प्रयास स्वतः उसका चालू हो जाता है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में 3.33.7 श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक उद्धृत किया है, जो कि माता देहूति अपने पुत्र कपिल मुनि से कहती हैं। तो ये बहुत ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। वे कहती हैं, अहो वतश्व पचतो गरीयान यह जिह्वाग्रे वर्तते नामतुभ्यम। ये कितना अद्भुत है कि यदि श्वपच है, श्वपच का मतलब होता है कुत्ता खाने वाला चंडाल, अगर ऐसा व्यक्ति भी मतलब भगवान के पवित्र नाम का या जिह्वाग्रे जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर वर्तते नाम तुभ्यम तुम्हारा नाम है, यानी कि अगर कोई श्वपच भी भगवान के पवित्र नाम का जप करता है तो क्या समझना चाहिए, ते पुस्तपस्ते जिह्वो सस्नो आर्या ब्रह्मानुचर नाम ग्रहंति ये थे, तब ये समझना चाहिए कि ऐसे जप करता निस्संदेह सभी प्रकार के तपस्या यज्ञ तीर्थ स्नान कर चुका है और शास्त्रों का अध्ययन कर चुका है, यानी कि वो जप कर रहा है, पैदा कहाँ पर हुआ है, चंडाल के घर में। तो यहाँ पर ये बात कितनी सोचनीय है, कितनी सोच मतलब इतना हैरत की बात है कि अगर उसने मतलब जप किया है, अगर उसने पहले से ही तपस्या की है, यज्ञ किया है, तीर्थ स्थान में स्नान किया है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो फिर वो श्वपच बना क्यों। अभी तो भगवान ये बता रहे हैं कि वो है ना बहुत ही सुंदर शाश्वत रूप में स्वर्ग में मजा करेगा, उसके बाद शुचि नाम श्रीमत आमगे है, फिर अगर उसने भक्ति के नियमों का पालन किया है तो फिर वो ऐसी जगह पर पैदा होगा क्यों। अब देखो यहाँ पर ये प्रश्न बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि यदि वो भक्ति करता है तो उसका पतन क्यों होता है? इसका उत्तर बहुत ही सुंदर है। देखो, इसको हमें समझना है कि भक्त जो है वो जब भक्ति करता है तो भगवान उसकी स्वेच्छा को नहीं छीनते हैं। ये नहीं है कि आप अगर भक्ति में आ गए तो अब आप और कुछ नहीं कर सकते। इसलिए क्योंकि ये भौतिक जगत में जो इंद्रिय तृप्ति का प्रलोभन है, माया है, वो इतनी गहरी है, तो इसलिए यदि इंद्रिय तृप्ति की ओर भक्त आकर्षित हो जाता है तो भगवान उसको बाय फोर्स ये नहीं कहेंगे कि नहीं तुम भगत हो तुम नहीं कर सकते। वो अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा यदि पूरी करना चाहता है तो जाहिर सी बात है वो भक्ति से गिरेगा। अब देखो, यहाँ पर एक बात और समझने की, अर्जुन ने जो बात पूछी है, अर्जुन ने क्या पूछा है कि अगर भक्ति को छोड़कर वो कर्म कांड करेगा तो उसे क्या प्राप्त होगा? ये मतलब अपराध की बात हुई नहीं है। अर्जुन जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, वो ये है कि अगर वो भक्ति पूरी नहीं कर सका, वापिस से कर्म कांड में लग गया तो उसका क्या होगा? क्या वो कर्म कांड का भी मतलब उसे फल नहीं प्राप्त होगा और भक्ति का भी प्राप्त नहीं होगा? लेकिन यहाँ पर एक और बात सोचनीय है कि अगर वो भक्ति करता है और भक्ति छोड़कर फिर अपराध करेगा तो उसको थोड़ी स्वर्ग मिलेगा। अब भगवान पर्टिकुलर सवाल का जवाब दे रहे हैं कि अगर भक्ति छोड़ के कर्म कांड में लग गया तो भी उसको स्वर्ग ही मिलेगा, वहां पर मजा करेगा और फिर उसको यहाँ पर संसार में बहुत ही अच्छे श्रीमान शुचिमतम ये है या फिर योगियों के कुल में जन्म। लेकिन अगर पाप में लग जाएगा तो उस पाप की प्रतिक्रिया अवश्य होगी। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो अर्जुन पूछ रहे हैं ना क्वेश्चन, वो द्वापर युग के लिए है कि क्योंकि उस समय वैदिक संस्कृति में जब भक्ति से कोई गिरता था, वैदिक संस्कृति इतनी प्रबल थी कि यदि कोई भक्ति से भी गिरता था तो भी वो पुण्य में लगता था, पुण्य कार्य में, कि ये प्राप्त करके ये करके वो करूंगा, मतलब पुण्य करते थे तो फिर उनको स्वर्ग मिलता था। लेकिन आज इस कलयुग में भक्ति के बाहर कर्मकांड नहीं है, वैदिक संस्कृति कहीं नहीं दिखती, बाहर का जीवन केवल आपको पतन कराएगा, केवल अपराध होगा, केवल भक्त जो है अगर भक्ति से बाहर निकलता है तो केवल और केवल पतित बनेगा, अपराध ही करेगा। उसको बाहर के जीवन में, भक्ति के बाहर कहीं भी उसे कर्मयोग नहीं मिलेगा, कर्मकांड भी नहीं मिलेगा, उसको अपराध ही मिलेंगे। इसलिए देखो, अब यहाँ पर एक मिसाल और भी हम कितने दिनों से पढ़ रहे हैं कि महाराजा भरत, उन्होंने भक्ति स्टार्ट की, भक्ति से भ्रष्ट हो गए तो उनको क्या मिला? क्योंकि वो काम में लग गए थे, आसक्ति में लग गए थे, हिरण के प्रति आसक्ति हो गई थी तो उन्हें स्वर्ग कहाँ मिला? उन्हें तो हिरण का जन्म मिला, जानवर का जन्म मिला उससे। तो यहाँ पर ये समझने की बात है कि अब देखो, भक्ति छोड़ के अगर कर्म कांड में लगते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है, लेकिन भक्ति छोड़ के यदि अपराध करेंगे तो अपराध का जो भी है ना रिजल्ट है, प्रतिक्रिया है, वो तो भोगनी है, वो तो हमें उसी हिसाब से होगा। इसीलिए यहाँ पर बताया अहो बतस्वा पशतो करिया, कि उसने भक्ति की लेकिन फिर अपराध में लग गया तो क्या हुआ? फिर वो शौपच बन गया, यानी चंडाल के घर पे पैदा हो गया। लेकिन फिर भी जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, कि उनके जिह्वा के आगे अग्रभाग में केवल भगवान का पवित्र नाम। यहाँ पर ये बात समझने की है कि भगवान की हुई भक्ति चाहे वो कितनी ही थोड़ी की जाए लेकिन इतनी महान है, इतनी महान है कि वो आपका साथ नहीं छोड़ सकती। अब देखो, पतन चाहे कोई भी हो, चाहे हम नरक की ओर जा रहे हैं या स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, ये भक्ति से पतन है। अगर आप स्वर्ग में भी जाते हो तो समझो भक्ति का पतन हो रहा है आपकी। भक्ति की मंजिल कृष्ण प्राप्ति है, और कृष्ण प्राप्ति को छोड़कर यदि वो स्वर्ग को प्राप्त कर रहा है तो उसका नुकसान ही हो रहा है, वो फेल ही हुआ है भक्ति में। लेकिन फिर भी यदि पतन हो रहा है, चाहे वो नरक में जा रहा है चाहे स्वर्ग में जा रहा है, तो पतन क्या होता है, वो भौतिक धरातल पर ही होता है। लेकिन जो उस व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति है वो सदैव भक्त के साथ ही रहेगी। यानी कि वो जैसे ही कभी भक्ति करना स्टार्ट करेगा, अब पतन करेगा, यानी भगवान ने उसकी स्वेच्छा को नहीं खत्म किया है, वो अपनी इच्छा से भक्ति में भले ही नहीं करना चाहता है तो वो पतन की ओर जाता है, इंद्र तृप्ति की ओर जाता है। लेकिन यदि उसको फिर वापस से उसको ये रियलाइज होना ही है कि इस भौतिक सुख में कोई आनंद नहीं है। क्यों? एक बहुत ही सुंदर राधानाथ महाराज जी का लेक्चर था, उसमें वो बहुत ही सुंदर बात बताते हैं, समझने की है। वो कहते हैं कि फॉलन डिवोटीज आर मोस्ट मिजरेबल, जो मतलब वो पतित भक्त हैं वो संसार में सबसे ज्यादा दुखी हैं, मोस्ट मिजरेबल। क्यों दुखी हैं? क्योंकि वे कहते हैं, उनके शब्दों में बताऊंगी, इफ यू हैव एनी प्लान्स टू एंजॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन, आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट इट इज टू लेट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी चैंट हरे कृष्णा। मतलब अगर आप इंद्र तृप्ति की योजना बना रहे हो तो मुझे खेद है ये बताने में, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब ये इंद्रिय तृप्ति आप नहीं कर सकते। अगर मतलब कर सकते हो परंतु अब आपको उसमें आनंद आएगा नहीं, क्योंकि एक बार जिसने हायर टेस्ट ले लिया हो, भगवान के पवित्र नाम का हायर टेस्ट जिसने प्राप्त कर लिया हो, फिर उसको भौतिक आनंद में, भौतिक वस्तुओं में रस, भौतिक वस्तुओं में आनंद आएगा नहीं। वो कोशिश भी करेगा कि चलो ठीक है, मैं अब थोड़ा सा आनंद लेना चाहता हूँ भौतिक वस्तुओं का, लेकिन इतना ज्यादा वो विचलित हो जाएगा। अब आध्यात्मिक आनंद उसे आ नहीं रहा है तो वो भौतिक की ओर अगर गिर भी जाता है तो भी भौतिक आकर्षण उसको अपनी ओर आकर्षित कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि उसने एक बार आध्यात्मिक आनंद का टेस्ट ले लिया है। फिर वो भले ही कुछ समय के लिए विचलित हो जाता है, पतित हो जाता है, लेकिन फिर उसे ये रियलाइज हो जाता है कि नहीं, मुझे यहाँ सुख नहीं मिलेगा, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे फिर से भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, भगवान की कथाओं को श्रवण करना है, यहाँ संसार में कोई आनंद नहीं। तो भगवान पहले जब वो गिरना चाहता है तो उसे सुअवसर देते हैं कि ठीक है, भले ही वो पूरा एक तरह से भौतिक वस्तुओं से पूरी तरह से जब उसका दिल खट्टा हो जाए ना, जब उसका जी भर जाए, फिर आए उसके, क्योंकि भक्ति में आने के बाद फिर कहीं उसके मन में भौतिक इच्छा ना हो जाए उत्पन्न, तो इसलिए उस भगवान उसको पूरा अवसर प्राप्त प्रदान करते हैं। लेकिन फिर भी उस अवसर को प्रदान करते हुए भी भगवान दो तरह से सहायता करते हैं। ये देखो, भगवान की कृपा कभी पीछे नहीं हटती, भगवान अपनी कृपा मय दृष्टि अपने भक्त के ऊपर सदैव रखते हैं, दो तरह से सहायता करते हैं। बाहर से तो वो बहुत से मौके देते हैं, ऐसे शुद्ध भक्तों से हमें मिलाते हैं। अब देखो, हम में से कुछ कितने लोग होंगे जो भक्ति में आगे बढ़ना नहीं चाहते होंगे, लेकिन भगवान ने किसी न किसी को हमारे जीवन में भेजा, ये भी तो भगवान की कृपा है ना। तो भगवान उसको कभी किसी शुद्ध वैष्णव से उसकी बहन करा देते हैं, किसी शुद्ध भक्त के साथ उसकी बहन करा देते, कोई अच्छी सी शास्त्र, उसको शास्त्र के द्वारा किसी की उन्नति होती है, कभी कोई ऐसा इंसिडेंट उसके जीवन में कोई ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसी बात, कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस हो जाता है, कोई ऐसा दुख उसके जीवन में भेज देते हैं। मतलब ऐसी तरह से इन सारी चीजों से भगवान उसको चांस देते हैं कि तुम फिर से आ जाओ भक्ति में, तो तुम्हें इस संसार में आनंद नहीं आएगा। तो भगवान बार बार उसे ऐसा मौका देते हैं, और ये तो बाहर से देते हैं, और अंदर से उस हम जब भी हम भक्ति से बाहर जाएंगे ना, हम सब करके देखे, भले ये नहीं करके देखना, लेकिन फिर भी यदि कोई भक्त इंद्र तृप्ति में आनंद खोजता है ना, तो हृदय से एक आवाज आती है, नहीं यहाँ आनंद मिलने वाला नहीं। भले वो करने कोशिश करता है कोई भौतिक सुख प्राप्त करने की, लेकिन हृदय उसका इतना हताश होता है कि उसे अंदर से भगवान ये बोल रहे हैं कि इंद्र तृप्ति में कोई आनंद नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई सुख नहीं है, जब तक तुम मेरे पवित्र नाम का जप नहीं करोगे, जब तक मेरी कथाओं को श्रवण नहीं करोगे, जब तक तुम भक्तों का संग नहीं करोगे, तब तक तुम्हें आनंद नहीं आएगा। तो फिर यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, पूर्वाभ्यासे नते नैवा ह्रियते ह्यवशोपिसः, कि अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वयं योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। फिर वापस से वो भगवान के साथ अपना योग जोड़ने का प्रयास करता है, क्योंकि वो पिछली भक्ति जो है वो उसकी सहायता कर रही होती है कि वो पुनः अपनी भक्ति को पुनः अच्छे तरीके से निर्माण कर सके, और इस तरह से भगवान उसमें उसकी बहुत सहायता करते हैं। यानी कि भगवान कभी भी अपने भक्त को नहीं छोड़ते। भगवान तो साधारण व्यक्तियों को भी सदैव मौका देते हैं इस भक्तों का संग देने का, भक्तों का ना सानिध्य प्राप्त होने का, साधु संग शास्त्र और है ना हर लिहाज से भगवान उसकी सहायता करने के लिए तैयार होते हैं। यह हमारी अपनी इच्छा ही नहीं होती है। कोई अगर बोलता है ना कि मेरे नसीब में भक्ति नहीं है, तो समझो उसकी इच्छा नहीं है भक्ति करने की, वरना भगवान हर किसी को मौका देते हैं। लेकिन जो जिसकी अधूरी रह जाती है उसको तो भगवान बहुत सुपर चांसेस देते हैं। जैसे हम सबको कैसे चांस मिलता है, अब देखो घर बैठे हम भागवतम श्रवण कर रहे हैं, हम भगवद गीता के श्लोक सीख रहे हैं, ये कितना बड़ा चांस है भगवान हमें दे रहे हैं। तो अवश्य हम सबकी भक्ति की जो ये श्रृंखला है किसी भौतिक भौतिक इच्छा के कारण छूट गई है, तो अब हम पुनः प्रयास कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना है कि हम इस प्रयास में सफल हो जाए। हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे और स्पेशली मैं बहुत पतित हूँ, आप सब मेरे लिए प्रार्थना करिएगा ताकि मैं अपनी भक्ति में उन्नति कर सकूं और सिद्धि अर्थात कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा। हरे कृष्ण।